अच्छा जी, तो इस सूरत को अगर हम इस तरह से डिवाइड कर लें ना थोड़ा सा, आप अगर इसको देख लें कि शुरू के अंदर जो मैंने आपको जैसे बताया ये यहया अलैहि सलाम की मौजजाना पैदाइश, उसके बाद ईसा अलैहि सलाम की मौजजाना पैदाइश है, ये फर्स्ट पार्ट कर लें, दो पैदाइशों का जिक्र है, मिरेकल बर्थ हुई है। फिर मिड में सूरत में इब्राहिम अलैहि सलाम का किस्सा और अम्बिया का, कुछ अम्बिया छह अम्बिया का जिक्र है। फिर एंड में मुशरिकीन मक्का से खिताब है, और आखिर में इस सूरत की बड़ी जबरदस्त बात है कि देखें शुरू के अंदर औलाद की बात, इसमें ना औलाद की बहुत बात है। बेबी शायद इसलिए लोग कहते हो कि औलाद की बहुत बात है इसमें, औलाद के पैदा होने की। तो आखिर में आके अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि उसको कोई औलाद नहीं है, औलाद इंसान की जरूरत है। और ये आप देख लें कि जिस वक्त ये सूरत उतरी है ना, उस वक्त मुसलमानों के लिए हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए क्योंकि अभी नया नया इस्लाम शुरू हो रहा है, बहुत ज्यादा परसिक्यूशन, बहुत ज्यादा जुल्म व सितम मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, गुलामों लौंडियों को कैसे मारा जा रहा था, कैसे उनको टॉर्चर किया जा रहा था, तो बहुत सफरिंग थी। और ऐसे नहीं लगता था कि ये देखें जिस वक्त जो मुश्किल वक्त होता है ना, इंसान को लगता है ये कभी भी नहीं खत्म होना, ये कैसे खत्म होगा, ये हालात कैसे सही होंगे, ये सब कैसे ठीक होगा। इंसान इतना बेचैन और इस कदर परेशान हो जाता है मुश्किल हालात में, और खास तौर पे आप खुद सोचें कि ऐसी कोई चीज चल रही हो कि हर तरफ ईमान वालों को ऐसा सताया जा रहा है कि उनका जीना दूभर कर दिया जा रहा है। आप थोड़ा सा अपने आप को उन हालात में जरा ले जाके खड़ा करके देखें कि इंसान का चैन और सुकून खत्म होके रह जाता है कि आपके सामने कोई शहीद हो गया है, इतने टॉर्चर के बाद उसको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है, एक औरत को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है, किस तरह से उनको ऊंट से बांध के और दोनों टांगों को और चीर दिया गया, बीच में नेजा मार दिया, इस तरह के टॉर्चरस बातें अपने इर्द गिर्द कोई सुन ले तो उसको तो रात को नींद ही ना आए कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और कैसे ये सही होगा, ये तो पता नहीं कभी सही हो सकता है कि नहीं। उस हालात के अंदर इस सूरत का उतरना क्या बताता है, व्हाट्स द मैसेज, आप ये मैसेज को समझिएगा कि ये इतना बड़ा मैसेज है ना कि अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, उसकी कुदरत में है, उसकी ताकत में है, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद अल्लाह सुब्हान ताला, नथिंग। तो क्यों आप परेशान होते हो, क्यों आप गम करते हो, जो अल्लाह बगैर बाप के बच्चा दे सकता है, जो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो कि बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, इतने जयीफ हो चुके हैं, उनको औलाद की बशारत दे सकता है, उनको ऐसा बच्चा दे सकता है, अल्लाह ताला हर हालात को भी सही कर सकता है। यानी आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज हो जाना, जो जो कि ह्यूमनली आप कहते हैं ना कि इस तरह से पॉसिबल ही नहीं है, जिसको आपका जहन कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो खरक आदत सुपर नेचुरल चीजें वो जब सामने हो रही हैं इस सूरत के अंदर, तो अल्लाह ताला तुम्हारी भी मदद कर सकता है, अल्लाह ताला तुम्हारे भी हालात बदल सकता है, अल्लाह अकबर। और इस सूरत में आप देखेंगे ये भी है कि दीन की तालीम अपने बच्चों तक पहुंचाना, अपनी नस्लों तक पहुंचाना, अगर आप अपनी नस्लों के लिए बेस्ट चाहते हैं तो उन तक दीन को पहुंचाएं। आज के सबक में खास तौर पे हम देखेंगे कि ऐसे औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए, और किस तरह से अंबिया का तरीका था। तो देखते हैं सूरत को, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, काफ हा या आइन सौद, हरूफ मुकत्तआत ब्रोकन लेटर्स के साथ स्टार्ट हो रही है, और आपको पता है कि और भी कई सूरतें हम पढ़ चुके हैं इसी तरह हरूफ मुकत्तआत के साथ, तकरीबन 29 सूरतें जो कुरान पाक में आई हैं, उनमें से आप किसी सूरत को इस तरह 5 लेटर्स के साथ नहीं स्टार्ट होता देखेंगे। अलिफ लाम मीम है जैसे, यासीन है जैसे, तोहा है जैसे, कोई दो कोई तीन कोई, लेकिन ये 5 लेटर्स के साथ सिर्फ ये सूरत स्टार्ट हुई है। एक और भी सूरत शुरू में, लेकिन उस पर 2 आयत्स में ब्रोकन है, एक पहले है फिर उसके बाद में दूसरी आयत में, इस तरह इकट्ठे जो जमा करके है ना वो इस सूरत के अंदर है। इनका माना, जैसे मैं पहले बता चुकी हूं कि इनका माना अल्लाह ताला ही जानता है कि इनका माना क्या है। अक्सर हरूफ मुकतात के बाद आप देखेंगे तकरीबन मेरे ख्याल 24 ऐसी सूरतें हैं जिनमें उनके बाद कुरान पाक का ही जिक्र है, वल कुरान लहकीन वल किताब मुबीन, इस तरह से। मगर 5 सूरतें ऐसी हैं जिनमें ऐसा नहीं है। बाज ने कहा ये रहमती रब्बिक, ये कुरान पाक की बात है, वज़कुर रहमती रब्बी की, कुरान पाक की बात है, मगर ज्यादा यही लगता है कि इस सूरत में आगे कुरान की बात नहीं है। तो 5 सूरतें ऐसी हैं जिनमें कुरान पाक का फिर जिक्र एंड में आता है, इस तरह से हरूफ मुकतात के बाद नहीं आता। ठीक है, तो हरूफ मुकतात जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि ये एक चैलेंज है कि ये इन हरूफ के साथ ये कुरान नाजिल हुआ, इन्हीं हरूफ के साथ ये कुरान के अंदर आयतें हैं, तो तुम भी कोई आयत ऐसी बना के ले आओ। जिक्र रहमत रब्बी का आबदा हु जकरिया, जिक्र है तेरे रब की रहमत का अपने बंदे जकरिया अलैहि सलाम पे। यानी जिक्र मतलब क्या, याद दिहानी है, रिमेम्बरेंस जिसको हम कहते हैं। रहमती रब्बी का, तेरे रब की रहमत का, अल्लाह की रहमत का नहीं कहा गया, तेरे रब की रहमत का। तो यानी रब का लफ्ज लाया गया, और रब के लफ्ज में क्या आया, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूं कि रब के लफ्ज के अंदर परवरिश करना, पालना, मोहब्बत इसके अंदर है, पालने का माना है। तो चूंकि आगे औलाद देने का जिक्र है, तो इसलिए यहां पे रब का लफ्ज आया। और आप देखते हैं कि पहले जो हम पिछली 2 सूरतें पढ़ चुके हैं उनमें अब्द आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्द का लफ्ज आया, और यहाँ पे जकरिया अलैहि सलाम के लिए अब्द का लफ्ज आया। और अब्द का लफ्ज मैंने जैसे आपको बताया कि अल्लाह ताला के नजदीक इंसान के लिए जो बुलंद तरीन मकाम है जिस पे वो पहुंच सकता है, वो यही अब्दियत का मुकाम है कि इंसान अल्लाह का बंदा बन जाए, अल्लाह का गुलाम बन जाए। ये है सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह ताला के पास। दुनियावी लिहाज से अब्द होना एक इंसान के लिए नीचा समझा जाता है, ये कोई किसी का गुलाम हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ गुलामी जो है वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप सोच लें कि सख्त हालात हैं, जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं, इतने नासाजगार हालात में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बात की है। उस दौर के लिहाज से आप सोचे ना, और अगर आप भी किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, मुश्किल हालात से आप गुजर रहे हैं, इस वक्त किसी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बात की है। ऐसे लगता है कि तपती धूप में जैसे कोई साया कर देना, जिस वक्त दूर दूर तक कोई साया नजर नहीं आ रहा, तो अल्लाह ताला रहमत का जिक्र कर रहा है कि मेरी रहमत हुई है, तेरे रब की रहमत हुई है जकरिया अलैहि सलाम पर। आप अपने भी हालात में इसको रखिएगा, जिन भी मुश्किल हालात से आप गुजर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप ये देखें कि वो उस वक्त जब ये सूरत उतर रही थी मक्का में, उस वक्त वहां के लोगों के क्या हालात चल रहे थे। ठीक है, जब दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण ना नजर आ रही हो, उस वक्त अल्लाह की रहमत की जो बरखा है वो कैसे बरसी है जकरिया अलैह सलाम पे। इससे इंसान को क्या क्या हासिल होता है, होप, उम्मीद कि अंधेरा दूर हो जाएगा। इतनी ज्यादा तसल्ली है इसके अंदर, इतनी ज्यादा ढारस है इसके अंदर। तो और वैसे ही रहमत का लफ्ज सुन के ही इंसान को ना एक तसल्ली और तशफी मिल जाती है कि अल्लाह ताला की रहमत तो बहुत ज्यादा है, और एक रहमत और रब्बी का, तेरे रब की रहमत, तो रब है, रब तो वो होता है जो मालिक होता है, और जिस चीज का कोई भी मालिक हो वो अपनी चीज की केयर करता है, छोड़ नहीं देता अपनी चीज को। तो रहमत भी है और रब भी है, रब में भी रहमत का माना आता है, और रहमत तो है ही अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी रहम की बात। और इसमें तकदीम और ताखीर है, यानी यहाँ पे रहमतु रब्बी का पहले आया और फिर आबदहु जकरिया आया। हालांकि होना क्या था, अगर वैसे सीधा लिया जाता तो आबदहु जकरिया पहले आना था, रहमती रब्बी का बाद में आना था। लेकिन असल में एम्फोसाइज किस पे है, जब किस चीज के ऊपर जोर देना होता है ना, तो फिर उसको पहले लाया जाता है। तो असल में जोर देना था रहमत का, रब की रहमत के ऊपर जोर है यहाँ पे। तो हार पढ़ने वाले को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बताया जा ही रहा है, हार पढ़ने वाले को भी कयामत तक के लिए ये बताया जा रहा है कि जकरिया अलैहि सलाम पे देखो अल्लाह ताला ने कैसे रहमत की थी। आप भी जकरिया अलैहि सलाम के नक्शे कदम पे चले तो आप भी रहमत को पा सकते हैं। और यहाँ पे हादा महजूफ है, महजूफ का मतलब क्या, यानी ये ओमिटेड है लेकिन अंडरस्टूड बात है कि ये है रहमत तेरे रब की। जकरिया अलैहि सलाम कौन थे, कहा जाता है जकरिया अलैहि सलाम नज्जार थे, यानी बढ़ई थे, कारपेंटर। ठीक है, इनसे हमें पता चलता है कि नबियों ने भी हाथों से काम किया, और हाथ से काम करना और कोई पेशा अपनाना, इसमें कोई आर नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि इसको नापसंद किया गया कि किसी के आगे हाथ फैलाए जाएं। आज हमारे यहाँ इस चीज से आर नहीं महसूस करते कि किसी से पैसे मांग ले, मगर ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े कोई चौधरी हैं कि हम तो जी काम कर ही नहीं सकते, और बैठ के खाना और अपने आप को बड़ी चीज समझना कि हम तो काम नहीं करते, और काम करने को या कोई भी पेशा अपनाने को या किसी भी प्रोफेशन को हम समझने लगते हैं कि ये तो हमारी बेइज्जती है कि मैं टैक्सी चला लूं, या ये मेरी बेइज्जती है कि मैं कोई बढ़ई का काम कर लूं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर लूं, या मैं कोई मजदूरी का काम कर लूं, या मैं कोई क्लर्कशिप का काम कर लूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी, हाँ बस बैठ के हुक्म चलाना ये मेरे लिए अच्छी बात है, इससे मैं बड़ा बन जाता हूँ। हालांकि ये बड़ाई की बात नहीं है। आप देख लें तमाम पैगम्बरों ने बकरियां चराई हैं। अब आप बकरियां चराने को आज क्या सोचेंगे, लो ये तो बहुत ही कोई छोटी चीज है, या बहुत ही छोटा सा प्रोफेशन है, या उसको मतलब कमतर चीज समझते हैं। हालांकि पैगंबरों ने इसमें कोई आर नहीं समझी। आप देखें कारपेंटर होने को आज आप सोचेंगे कि ना ये तो कोई बात ही नहीं है, बड़ा कोई भाई प्रेसिडेंट ही होना चाहिए। नहीं, तो उन्होंने जब आर नहीं समझी तो हम क्यों समझे। ठीक है, इज नादा रब्बहू, अब उनकी कहानी आई है। अब वो उस रहमत का जिक्र है जिसको यहाँ पे बताया गया ना कि कैसे वो रहमत आई। याद इस जब आता है ना, जब कोई चीज जो होती है माजी में होती है तो उसको कहा जाता है ना याद करो जब ऐसा हुआ था, याद करो जब पुकारा था उसने, किसको पुकारा, अपने रब को पुकारा। पुकार में क्या होता है, निदा जब आप देते हैं ना, हम कहते हैं मुनादी ने निदा दी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता होती है कि जोर से होती है, जोर से होती है ना। निदा देने का मतलब है कोई दूर है तो आप फासले वाले पे कहते हैं फलां इधर आओ। जब पुकारा उसने निदान खफिया, निदा मगर सुभान अल्लाह चुपके चुपके, सुभान अल्लाह। इस पे बहुत कुछ लिखा मुफस्सिरीन ने कि वो यानी निदा कैसी थी, कि थी तो निदा लेकिन वो अंदर निदा थी, जब बाहर है तो वो खुफिया थी। अंदर से तो वो पुकार रहे हैं, जैसे अंदर डेस्परेशन होती है ना, तो इंसान कहता है जब वो बहुत डेस्परेट होता है तो वो फिर उसके अंदर चीखें होती हैं, उसके अंदर वो सारा कुछ होता है जो भरा हुआ है, लेकिन जब वो पुकार रहे हैं तो खफी है। यहां से पता चला कि दुआ जो है ना, खफी मांगना, चुपके चुपके खुफिया मांगना, वो ज्यादा बेहतर है ऊंची आवाज से। और जो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा के वो ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं, तो आपने फरमाया कि तुम इतनी ऊंची ना पुकारो, उससे तुम किसी बहरे को सुना नहीं रहे और किसी गायब को सुना नहीं रहे। यानी अल्लाह ताला इंसान की शहरा से भी ज्यादा करीब है, और अल्लाह ताला उसके दिल के भी ख्यालों को सुनता है, और उसकी जो पुकार है उसको सुन सकता है। तो फिर क्या जरूरत है इतनी ऊंची ऊंची चीख चीख के पुकारना, जैसे कुछ लोग डेस्परेशन में चीखना शुरू कर देते हैं अल्लाह तू कहाँ है, अल्लाह तू ऐसे, ये अदब के खिलाफ है, ये अदब नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखें दो दफा है ना, नादा और नीता एग्जेजुरेशन के लिए आ रहा है कि वो पुकार रहे थे, डेस्परेशन में पुकार रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी पुकार कैसी थी? खफिया थी, ऐसे चीखना नहीं था। तो हालांकि अल्लाह तआला को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चीख के पुकारे या आहिस्ता पुकारे, वो तो सुन सकता है, लेकिन अदब नहीं है ना इसमें। और दूसरा इखलास, इखलास जो है ना वो ज्यादा किस में है कि इंसान खफी अल्लाह को पुकारे, क्योंकि जब वो ऊंचा पुकारता है ना उसमें रियाकारी आ सकती है, लोगों को सुनाना आ सकता है। तो इन्होंने क्यों ऐसे पुकारा? एक तो रियाकारी से बचने के लिए, दूसरा जब इंसान खफी पुकारता है ना तो वो शर्मसारी से बच जाता है, इसलिए कि बस चीजें हम लोगों के सामने कहेंगे ना तो वो मजाक करेंगे कि ये कैसे, यानी एक आप अपना तमाशा बना लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई मांग रहा है, कोई लड़की मांगती है कि या अल्लाह मेरी शादी हो जाए, मुझे कोई अच्छा शोहर दे दे, तो किसी के सामने मांगने में वो शर्म महसूस कर सकती है ना, इन अल्लाह ताला के सामने कोई शर्म नहीं। अब जैसे जकरिया अलैहि सलाम है, अब वो मांग रहे हैं औलाद, इतने बूढ़े, कहते हैं वो इतने बूढ़े हो चुके थे, बास रिवायत में तो होता है कि 100 साल से भी ऊपर हो गए थे। आगे आप उनकी बात भी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा वो कितने जयीफ थे, लेकिन फिर भी जब वो औलाद मांग रहे हैं तो कोई सुने तो कहेगा कि देखो बूढ़े को क्या शौक चढ़ा, ऐसे हो सकता है ना। तो उसके अंदर इंसान का एक पर्दा भी रह जाता है, फिर आजी भी इसके अंदर ज्यादा है। तीसरी बात क्या है, खफी जब आप करते हैं ना दुआ, तो ये सारी चीजें उसमें आजी, आजी खफी में ही है, आजी इसमें नहीं है कि चीखना शुरू कर दे इंसान। ठीक है, और तो एक बात हमें यहां से ये पता चलती है कि जब भी पुकारना है तो रब को ही पुकारना चाहिए, ये नहीं कि इतने साल से तो मैं मांग रहा हूं तो कोई फायदा तो हुआ नहीं तो अब किसी और के पास चलते हैं, अभी मांगते मांगते बूढ़े हो चुके हैं। अच्छा, आप कोई जवान देखे मांगे औलाद तो फिर भी इतना कोई बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर कोई मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे, इतना इसको आज इतनी बुरी चीज बना दिया गया है, कई औरतें शेयर करती हैं तो कहती हैं आए अगर इस उम्र में हमारे पास औलाद हो गई तो लोग क्या कहेंगे, वो बेचारियां डरती हैं उसकी वजह से, वो यानी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो फिर भी अबॉर्शन करा लेती हैं कि लोगों को हम क्या जवाब देंगे। तो फिर जो लोग इस तरह की बातें बनाते हैं और इस पे हंसते हैं और एक बातें ऐसी करते हैं कि देखो इनको बुढ़ापे में क्या शौक चढ़ गया और ये कैसे हैं और ऐसे, वो फिर पहले सबसे तो इन पैगंबरों का मजाक उड़ाने वाले हो गए। आपके सामने तो ये पैगंबरों की बात है, इब्राहिम अलैहि सलाम भी किस एज में उनको बेटा हुआ था, किस एज में इसहाक अलैहि सलाम हुए थे, सोचे इब्राहिम अलैहि सलाम, बल्कि इस्माइल अलैहि सलाम भी बहुत बड़ी एज में वो थे जब जिस वक्त हुए थे। तो सबसे पहले तो फिर आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बाद किसी और की बारी आती, कोई भी और यहाँ पे तो इतनी एज इसका नहीं कि 90 या अबव 90 या 100 अबव कोई हो, कोई बेचारा 50 साल का भी हो जाए तो उसके ऊपर भी मजाक है, किसी के बड़े बच्चे हो जाए और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका मजाक है। तो इस तरह की चीजें हमें कम से कम जेब नहीं देती जो कुरान पढ़ने वाले होते हैं, और कुरान में पढ़ रहे हैं कि पैगंबरों के साथ क्या था। तो ये उन्होंने प्राइवेटली बहुत उस वक्त मांगा, और ये किस वक्त मांगा इसकी अगर आपको याद हो तो हम सूरह आले इमरान में ये पढ़ चुके हैं। सूरह आले इमरान में अगर आप देखें आयात, तो आयत नंबर 37 से पहले मरियम अलैहि सलाम का जिक्र है, और उसमें ये आता है फतकबल्ला रब्बुहा बिकबूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसन व कफलहा ज़करिया, ज़करिया अलैहि सलाम ने उनकी किफालत की थी। तो जब भी वो दाखिल होते थे उनके पास मेहराब में तो देखते थे कि उनके पास वो बेमौसम फल हैं, तो फरमाते थे या मरियम अन्ना लकी हादा, ए मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गए, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, तो वो कहती है ये अल्लाह की तरफ से, इन अल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहे बगैर हिसाब किताब के रिज़्क़ अता फरमाए, हुनालिका दअ ज़करिया रब्बहु, तो वहां से हमें पता चलता है उस वक्त जकरिया अलैहि सलाम ने फिर दुआ की रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउ दुआ, तो फिर वो उस वक्त कहने लगे है मेरे रब मुझे औलाद की नेमत दे, नेक औलाद की, तो वो तो उस दुआओं को सुनने वाला है। ठीक है, तो उस वक्त की उनकी ये दुआ है जब उन्होंने देखा कि वो रब जो बेमौसमे फल हजरत मरियम को दे सकता है, तो मैं भी बेमौसमा एक दरख्त हूं, अल्लाह ताला मुझसे भी औलाद, मुझे भी औलाद दे सकता है। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि सबसे अच्छा जिक्र वो है जो खफी हो, खुफिया यानी खामोशी के साथ। ऐसे नहीं है कि आप हाथ में तस्बीह पकड़ के ना तो लोगों को दिखाते रहें कि जो लोगों को पता चले मैं तो बड़ा जिक्र कर रही हूँ, जिक्र चाहे करने ना वो, लेकिन तस्बीह पकड़ी भी है ताकि लोग देख लें, या फिर ऐसे लोगों को जिक्र कर करके बताएं ताकि लोगों को पता चले हम कितना जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो खफी जिक्र है ना वो बेहतरीन है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि हमारी दुआएं भी और हमारे अज़कार भी ऐसे हों जिसमें यानी प्राइवेटली हों, चुपके चुपके हों। खास तौर पे रात के पिछले पहर जब आप उठ के दुआ करते हैं तो उस दुआ के अंदर कोई रियाकारी नहीं आती, इसलिए क्योंकि उस वक्त कोई आपको देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई जानता ही नहीं कि आप इस वक्त उठे हुए और जारी कर रहे हैं। लेकिन देखें आप, हमारी दुआएं हम वैसे बहुत कहते हैं ऐ अल्लाह ये हमारे लिए कर दे, लेकिन हमारी दुआओं के अंदर ना जैसे इन्होंने दुआ की है, आप देखिएगा दुआ के एटिकेट्स क्या होते हैं, हमारी दुआओं के अंदर वो इखलास नहीं होता, वो तड़प नहीं है, क्योंकि जो दुआ दिल से की जाए ना वो कबूल होती है। अब यहाँ पे आप देखें वो खफी आवाज होती है, इंसान जो ऊंची ऊंची ना हो, जो चुपके चुपके हो, और पुकार रहे हैं अल्लाह ताला को अपनी तन्हाई में, इसका मतलब है कि कुछ लोगों के सामने नहीं है, खफिया तो तभी हो सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी दुआ, अल्लाह ताला फरमाते ना उदो रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब को पुकारो तदर्रो के साथ, खुशू के साथ, खुशू के साथ और खुफिया। अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता, और कहा जाता है बादशाहों के आगे आवाज बुलंद नहीं की जाती, ऐसे ही है ना। तो इतने बड़े बादशाह के आगे ऊंची आवाज से ऐसे करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और इंसान फोकस भी लूज कर देता है। कहला रब्बी इन्नी वहन अल आज़्म मिन्नी, उन्होंने कहा ऐ मेरे रब बेशक कमजोर हो गई आदमु मिन्नी, इजाम नहीं कहा, इजाम हड्डियां, लेकिन हमने आदमु हड्डियां ही करा, मिन्नी इजाम ही भी कहा जा सकता था, मेरी हड्डियां, आदमु और मिन्नी अलग है, इससे पता चलता है कि आजम तो एक हड्डी को कहते हैं, तो जैसे ऐसे लगता है कि सारी हड्डियां एक ही हो गई, और मिन्नी अलग है जैसे मेरे से अलग ही हो गई, और कैसी हैं वो, कमजोर हो गई हैं, सब वहन हो गई हैं। तब वहन जब कोई चीज होती है ना, यानी हार्ड चीज जब सॉफ्ट हो जाए तो उसको कहते हैं वहन, तो जैसे सारी हड्डियां मिन्नी मुझसे अलग हो गई हैं, ठीक है, और यानी इतनी कमजोरी, और आपको पता है अगर हड्डियां कमजोर हो जाए तो इंसान तो हड्डियों पे ही खड़ा होता है, अब वो हड्डी सही ना रहे तो फिर आप बताएं कि इंसान के हालात कैसे हो जाते हैं। अब कहते हैं ना इनकी उम्र 110 साल हो चुकी थी, तो उस वक्त क्या हालात हो गए हड्डियों के। वश्ताला रासु शैबा, और भड़क रहा है मेरा सर बुढ़ापे की वजह से, और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क रहा है का मतलब क्या, यानी उन्होंने अपने सर को ऐसे जैसे कोयला होता है ना, कोयला जल जल के फिर उसके बाद क्या उसका कलर होता है, तो वाइट हो जाता है, तो भड़क रहा है मेरा सर, और वाइट बाल जो होते हैं ना वो ज्यादा ही प्रोमिनेंट होते हैं, तो बहुत दूर से नजर आते हैं, काले बालों वाला होता है वो जितनी नहीं, लेकिन उसमें एक ग्लो होती है। तो इतनी खूबसूरती से ये बात उन्होंने फरमाई ना कि अल्लाह मेरी ये हालत हो गई है, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन फिर भी वलम अकुम बिदुआए का रब्बी शकिया, ये इतनी खूबसूरत बात है, इतनी खूबसूरत बात है, अल्लाह फिर भी मैं तुझसे मांग के कभी महरूम नहीं रहा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, 110 साल का बंदा होके कह रहा है अल्लाह मैं तेरे से मांग के कभी महरूम नहीं रहा, अल्लाह ताला हम भी तुझसे मांगते, तूने ही आज तक हमें अता किया, आगे भी तूने ही अता करना। अल्लाह ताला हमारी तमाम मुरादों को पूरा फरमा दे। तुझसे ही पहले मांगा और तुझसे ही मांगना है। तूने आज तक कभी मायूस नहीं किया। अच्छा हमारी क्या बात होती है, हम कहते हैं तो हमारी तो कभी दुआएं कबूल नहीं होती। मेरी तो नहीं दुआ कबूल होती, आप ही मांगे हमारे लिए। ये एटिकेट्स नहीं है दुआ मांगने के। सुभान अल्लाह, आपका मतलब है कि वो पहली दफा मांग रहे होंगे औलाद, कभी नहीं उन्होंने मांगी होगी, उनको अभी याद आया मांगने का। नहीं, इसका मतलब पहले भी मांगते रहे होंगे, लेकिन सुभान अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह मैं तुझसे मांग के तो कभी मायूस नहीं हुआ, यानी तूने आज तक इतना कुछ अता किया। हाँ, इतना कुछ अता किया। कहते हैं हातिम ताई जो था ना सखावत का, आपको पता है बहुत बड़ा नाम है हातिम ताई, उसके पास एक आदमी आया और उसने कैसे मांगा उससे, कहने लगा मैं वही हूं जिसके साथ आपने हमेशा कर्म किया। अल्लाह अकबर। तो हातिम ताई कहने लगा अंदर आ जाओ, उससे ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है जो मेरी सखावत का ही मुझे वास्ता दे कि आप मेरे साथ हमेशा कर्म करने वाले, मैं वही हूँ जिनके साथ आपने पहले भी हमेशा कर्म किया। तो ये कहना कि किसी को कहें आपने तो कभी आज तक हमें कुछ दिया ही नहीं, आपको कैसा लगता है? आपके बच्चे अगर आपको ये कहते हैं अम्मी आपने तो हमारे साथ कभी अच्छा किया ही नहीं है, आपने हमें क्या दिया, तो कैसा लगता है? माँ बाप का दिल टूट जाता है, कितने गमजदा होते हैं उसके बाद। ये बच्चा ये कह रहा है, और हमने तो क्या दिया होगा अपनी औलाद को, जो अल्लाह ताला ने हमें कितना कुछ नवाजा है, बिन मांगे हमें कितना कुछ दिया। इसके बावजूद अगर हमारे जुबान से ये अल्फाज निकलते हैं तो ये कितनी बेअदबी के अल्फाज है, कितनी बुरी बात है कि हम कहें हमारी तो कभी दुआ ही नहीं कबूल है। कितने आराम से आपने कह दी, एक कभी नहीं दुआ कबूल हुई, हालांकि उसके भी कबूलियत के, अल्लाह ताला जो दुआ कबूल करता है उसके भी तरीके हैं कबूल करने के, ये हम जानते हैं कि हर दुआ कबूल होती है, लेकिन तरीके हैं। ये नहीं होता जरूरी कि जो हमने मांगा है वही मिल रहा है तो फिर कबूल हुई है, उसके अलावा तो कबूल ही नहीं हो रहा। हम तो ऐसे करते हैं जैसे कि हम किसी ऐसे को पुकार रहे हैं जो ना सुनता है ना कोई हमारी तरफ तवज्जो देता है, बस हम हवा में ही बोलते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दिल से मांगी है ना तो कबूल जरूर हुई है, मगर उसके ढंग है कबूल करने के और उसका वक्त है कबूल करने का। हम डेस्परेशन से बोलते हैं, लेकिन हम ये सोचें कि जकरिया अलैहि सलाम की एज आप अंदाजा कीजिए, और फिर वो कह रहे हैं अल्लाह मैं महरूम नहीं हुआ। सोचें कि अंबिया का तरीका, नेक लोगों के तरीके, दुआ तो मांगना हम सीख लेना, और आप देखें दुआ जो होती है ना वो कनेक्शन बताती है इंसान का कि अल्लाह ताला के साथ उसका कैसा कनेक्शन है। अब यहाँ पे देखें और अपनी हालत ज़ार बता रहे हैं, और उलमा इससे कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि अपनी कमजोरियों का जिक्र करे अल्लाह के आगे, अपनी मजबूरियों का जिक्र करे, अपनी गलतियों का भी जिक्र करें और अपनी बेबसी शो करे अल्लाह के आगे। आप दुआए मुस्तदाफीन देखते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से आके दुआ मांगी थी, अपनी कमजोरी का जिक्र किया था। तो आप भी बताएं कि अल्लाह मैं कितनी बेबस हो गई हूं, मैं कितनी मजबूर हो गई हूं, अल्लाह तुझे पता है मेरे पास और कोई दर नहीं जाने का। वो बता रहे हैं ना, अब अल्लाह ताला को क्या नहीं पता कि कितने बूढ़े हो गए, पता है, उससे ज्यादा कौन जान सकता है। मगर अल्लाह ताला चाहता है कि उसका बंदा इजहार करे, उसका बंदा बोले। अब बाज लोग दुआ नहीं करते, नहीं दुआ करने का क्या फायदा, अल्लाह को पहले ही पता है मेरे क्या हालात है, वो तो ज्यादा ही जानता है, तो इससे मेरे दुआ करने का क्या फायदा। नहीं, अंबिया ने दुआएं की हैं, अंबिया जो अल्लाह ताला के कितने करीब हैं, और वो तो यानी उनसे ज्यादा परफेक्ट कोई इंसान हो नहीं सकता जितने नबी होते। इसके बावजूद वो अल्लाह से मांगते थे, अब वो भी कहते हमें क्या, अल्लाह ताला का दीन है जो मर्जी हो, अब वो तो अल्लाह ताला का ही है ना, वो जैसे मर्जी करे, हमें हमें क्या, हम मांगने की जरूरत क्या। बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना गिरियाओजारी कर रहे हैं कि चादर बार बार गिर जाती थी कंधों से, कितनी गिरियाओजारी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं मुझे क्या फिर, नहीं होगा तो नहीं होगा ना। लेकिन तो सब मांगते थे। इमाम मुजनी कहते हैं कि इमाम शाफी से मिलने गया, वो बिस्तर मर्ग थे तो उनसे पूछा कि क्या हाल है, तो फरमाते मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ और मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, मैं नहीं जानता मेरे लिए आगे जन्नत है या जहन्नम। फिर कहते हैं ऐ अल्लाह हर चीज मुझे छोड़ चुकी है, मेरे लिए सब चीजें तंग हो गई हैं, मेरी एक ही उम्मीद है और वो तू है मेरे अल्लाह। ये सिर्फ तेरी रहमत और करम है जिससे मुझे उम्मीद है, वरना जब मैं खुद को देखता हूँ तो मायूस हो जाता हूँ, मगर तेरी रहमत और करम को देखता हूँ तो मेरे अंदर नई उम्मीद भर जाती, और मैं जानता हूं कि तू कितना गफूर रहीम। यानी इंसान अपनी बेबसी भी बताता है, इंसान अपनी मजबूरी भी बताता है, इंसान अपने आप को छोटा करता है अल्लाह के आगे, फिर मांगता है। तो क्या जब हम दुआएं करते हैं तो हम वो रटी रटाई दुआएं मांग रहे होते हैं कि हमने किताब खोली भी है? इवन हम जब वहां जाते हैं हरम पाक में जाते हैं, तो वहां पे भी जाके बस दुआओं की किताब से हम बस पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और या हम 2-4 मिनट दुआ की और बस दुआ करके बस काफी है, इतना नहीं, इतना नहीं काफी। आप ये देख लें कि कितनी उन्होंने जो दुआ की अभी तक तो आई ही नहीं है, जकरिया अलैहि सलाम ने मांगा क्या? ठीक है, अभी तो आया ही नहीं है, तो अभी तो सिर्फ अपने आप को बयान ही कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें सीखना है, दुआ को मांगना सीखना है। देखिए हम कमजोर हैं, अपनी कमजोरी को जाहिर करें उस कवि के आगे जो ताकतवर है, दुआ में आजिज़ी अख्तियार करें। आप देखते हैं, और दुआ में ये भी कि अल्लाह ताला की तारीफ पहले करें। सूरह फातिहा में आप देखते हैं ना कि फौरी इहदिना सिरात अल-मुस्तकीम नहीं कह दिया गया, पहले कितनी लंबी तमहीद है। अल्लाह अकबर। फिर वह इन्नी खिफ्तुल मवालिया में वराई, अब बता रहे हैं कि मैं क्यों तुझसे ये मांग रहा हूं अल्लाह, अभी भी दुआ नहीं, जो चीज नहीं मांगी। अल्लाह मैं डरता हूं अपने कराबतदारों से अपने बाद, मैं वराई का मतलब ये है कि मेरी डेथ के बाद मेरे कराबतदारों से मैं डरता हूँ। किस बात से डरता हूँ? कि मतलब है कि वो इस दीन को आगे लेकर नहीं चल सकेंगे, वो ये नहीं है, मवाली जो होते हैं ना वो डायरेक्ट वारिस नहीं होते कि मेरी औलाद, बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली को, जो चचा मामू कजन वगैरह, कि मैं उनसे डरता हूँ कि वो कहाँ इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकेंगे, इस पैगाम को आगे ले जा सकेंगे। अंबिया के लिए ये नहीं होता था कि भाई मेरे पैसे को कहाँ वो करेंगे, मेरे बाद मेरा कारोबार कौन संभालेगा, या अल्लाह हम तो इस वजह से मांगते हैं ना कि अल्लाह मेरे बाद मेरी जायदाद का क्या होगा, मेरे बाद मेरी इन चीजों का क्या होगा। नहीं, उनको क्या था, मेरे बाद मेरे इस मिशन को कौन आगे लेकर चलेगा। ठीक है, तो वकाना तिमरवाती आखिरा, और मेरी बीवी बांझ है। सुभान अल्लाह, अभी तक मांगा नहीं है कुछ भी, अभी सिर्फ बातें ही हो रही हैं। तो अल्लाह ताला से बात करना भी सीखना चाहिए, हमारे पास लोगों के साथ बातें करने का इतना टाइम भी है और बातें खत्म भी नहीं होती, लेकिन यार अल्लाह ताला से बात करने लगते हैं तो फिर क्यों बातें खत्म हो जाती हैं? इसलिए कि कनेक्शन नहीं है ना, कभी कनेक्ट ही नहीं किया। बातें इंसान उसके साथ करना चाहता है, पता है, ये जो उसको महबूब होता है, जो उसको पसंद होता है। आप देखें जिनके साथ आपकी बनती नहीं है उनके साथ ज्यादा 2 मिनट बात कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे अच्छा चलो मैं चलती हूँ, लेकिन जिन जो आपको प्यारे होते हैं ना उनके साथ बात कर करके भी आप थकते नहीं है, कहते चलो 5 मिनट और, चलो 5, चलो 10 मिनट और, दरवाजे तक जाते जाते भी 10 मिनट खड़े रहेंगे, बाहर जाके भी 10 मिनट खड़े रहेंगे, दिल ही नहीं करता छोड़ने को, है ना? तो जो अल्लाह ताला से भी मोहब्बत करता हो ना, फिर उसकी बातें अपने रब से भी खत्म नहीं होती, फिर वो बातें करके थकता नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इन आयतों के अंदर सीखने के लिए हमारे लिए। तो मेरी बीवी बांझ है, आई मीन लुक एट द ह्यूमिलिटी के जो उनके अंदर आजी थी ना, वो कितनी ज्यादा थी अपनी, यानी ये भी अपनी कमजोरी का इजहार है ना, कि ना बीवी एक ही थी उनकी और वो भी बांझ के, आज तक उनकी औलाद नहीं हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, अकीम नहीं कहा, अकीम का मतलब है बायोलॉजिकली इस काबिल नहीं है, जो अल्लाह ताला ने जहां पे कुरान पाक में फरमाया ना कि कुछ को हम बेटे देते हैं, कुछ को बेटियां देते हैं, कुछ को अकीम रखते हैं, यानी वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको औलाद हो, बायोलॉजिकली इसका, जैसे किसी का यूट्रस ही नहीं हो, किसी को ओवरीज ही नहीं हो, या ऐसा कोई मसला है, तो फिर वो तो अकीम है। लेकिन आखिर वो है जिसकी कभी बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, बस बात जिसको कह देंगे कि कभी औलाद हुई ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकती कोई, उसके अंदर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, वो नहीं है बात, ठीक है। तो अब फरमाते हैं हमारे के जाहिरी असबाब क्या है, आखिर है, आखिर है, मकर अकीम नहीं है। फहबली मिल लदुन का वलिया, तो हब, हब का आप देखते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना। हब क्या होता है, जैसे हिबा आप कहते हैं ना, हिबा गिफ्ट को कहते हैं, तो ये वो वाला गिफ्ट होता है जिसके बदले में आपको, जो देने वाला है वो कुछ नहीं चाहता इन रिटर्न, ठीक है। तो एला मुझे गिफ्ट दे दे, और मिल लदुन का अपनी तरफ से। और जब भी औलाद मांगी जाती है तो इस तरह का ही वर्ड आता है, क्योंकि ये इनके जो दूसरी जगह पे भी आले इमरान में ना, रब्बी हबली मिल लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यिबा, यहाँ पे है हबली मिल लदुन का वलिया, एला वली दे दे। वली यानी वली वो होता है जो करीब होता है, जो जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसपे आप डिपेंड कर सकते हैं, जो करीबी दोस्त को भी कहते हैं, सपोर्टर को भी कहते हैं। तो मुझे वली दे दे, मेरा वारिस दे दे, मेरा मददगार दे दे, और जो मेरे करीब हो। तो अब इस ये किस चीज के अंदर वरासत है, जैसे मैंने आपको बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि हमारा वारिस नहीं बनाया जाता, जो हम छोड़ देते हैं अंबिया, वो सदका है, यानी अंबिया के गुरु, अंबिया का वारिस कोई नहीं होता, जो भी वो छोड़ते हैं ना माल में से, वो भी सदका होता है, उनकी औलाद को नहीं मिलता कुछ। अगर अब खैर अंबिया के उसमें तो कोई ऐसी चीज होती भी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें छोड़ी थी बहुत ही काम, कोई एक जीरा थी, या इस तरह से कोई प्याला था, या ऐसे एक जग सा था, या ऐसी चीजें थी। मगर अदरवाइज अगर बड़ी बड़ी चीजें भी हों तो उनका जो तरका है वो ऐसे नहीं बढ़ता जैसे दूसरे लोगों का होता है, बल्कि उनका सदका हो जाता है। तो उनकी जो विरासत होती है वो इल्म होता है, ठीक है। तो ज़करिया अलैहि सलाम ने भी माल के वारिस की दुआ नहीं की है कि वली का मतलब माल का वारिस, बल्कि इनके इल्म और उनका जो मिशन और उनकी जो ये जो 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 तालीम थी उसकी विरासत, ठीक है, दीन को आगे लेकर चलना। क्योंकि देखिए उनकी तो जो अंबिया की सारी सबसे बड़ी फिक्र यही होती है ना कि इससे इसको फैलाया जाए, दीन का काम आगे किया जाए।